أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گھر بچاؤ کے سلسلے کا آج چوتھا اور آخری پروگرام انشاءاللہ طلب ہم کریں گے، اور آج کی آیتیں سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک، یعنی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 to 39. سب سے پہلے ان کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
ترجمہ دیکھتے ہیں بن آیات کا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو मगर इस सिर्फ इसकी। वालदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें, तो इन्हें उफ तक न कहो, न इन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनसे एहतराम की बात करो और नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम सालेह बनकर रहो, तो वो ऐसे सब लोगों के लिए बहुत दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूरों पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। रिश्तेदार को इसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को इसका हक। फजूल खर्ची न करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुकरा है। अगर इनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मिसकीनों और मुसाफिरों से तुम्हें कुतराना हो इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो इन्हें नरम जवाब दे दो। ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो और ना इसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और इन्हें देख रहा है। अपनी औलाद को अफलास के अंदेशे से कत्ल न करो। हम इन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत इनका कत्ल बहुत बड़ी खता है। जिना के करीब भी ना फटको, वो बहुत बुरा फेल है और बड़ा ही बुरा रास्ता। कत्ले नफ्स का इर्तिकाब न करो जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया है मगर हक के साथ। और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो, इसके वली को हमने कसास के मुतालबे का हक अता किया है, बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से न गुजरे। इसकी मदद की जाएगी। माले यतीम के पास ना फटको मगर अहसन तरीके से, यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुँच जाए। अहद की पाबंदी करो। बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो। ये एक अच्छा तरीका है और बलिहाज़े इंजाम भी यही बेहतर है। किसी ऐसी चीज़ के पीछे न लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। यकीनन आँख, कान और दिल सभी की बाज़ पुरस होनी है। ज़मीन में अकड़ कर न चलो। तुम न तो ज़मीन को फाड़ सकते हो, न पहाड़ों की बुलंदी को पहुँच सकते हो। इन उमूर में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। ये है वो हिकमत की बातें जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। और देख लो, अल्लाह के साथ कोई दूसरा मामूद न बना बैठना, वरना तो जहन्नुम में डाल दिए जाओगे मुलामत सदा और हर भलाई से महरूम होकर। तिलावत सुनते हैं आयात की।
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا
اب ان آیات کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا. اور کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو. کیسے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو. اور کیا کرو؟ واحفظ لهما جناح الذل من الرحمہ. اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کی ساری سے ان کے آگے جھکے رہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا. اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ایمان والوں کو خوبصورت کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں لیکن یہاں انداز تھوڑا سا مختلف ہے. وَقَدَا رَبُّكَ. فیصلہ کر لیا آپ کے رب نے, ڈیسائیڈ کر لیا, یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے سوچنے کی, نیگوشیبل بات نہیں. اللہ کا یہ ڈیسیژن ہے. کیا؟ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے. حقوق اللہ کی بات ہوئی تو اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ کہ بندے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کے بعد کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. ये उस ज़ात की मेहरबानी है कि दुनिया की ज़िंदगी में वो इंसान के शऊर को दावत देता है कि वो अपने शऊर से हक या बातिल में किसी एक चीज़ का इंतखाब कर ले। पहली चीज़ जिस पे बात की वो अकीदा है, वकदा रब्बुका, तेरे रब ने फैसला कर लिया, यानी ये बात मुस्तनद है कि उसके साथ कोई शरीक ना होगा। अल्ला ताबुदू इल्ला इया, तुम उसके सिवा किसी की बंदगी ना करना। इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन कह के जो दावा करते हो इसको पूरा करना। इससे क्या मालूम होता है कि इस्लाम लोगों को इज्तमाईयत की तरफ बुलाता है और सारी दुनिया को जिस हस्ती पे हम जमा कर सकते हैं वो अल्लाह की जात है, कि अल्लाह के सिवा किसी की गुलामी ना हो। यही है वो एक अकीदा, वो नजरिया जिस पे सब जम सकते हैं, क्योंकि रब को तो सभी मानते हैं। इसके अलावा जिसने किसी दूसरे की तरफ बुलाने की कोशिश की तो उस वक्त फिर भटक गए। झगड़े और इख्तलाफत कहाँ से आते हैं? जब अल्लाह की जात के अलावा किसी और पे निगाह पड़ती है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने ये फैसला कब किया? कदा का लफ्ज़ है ना, फैसला कर दिया। कब किया? क़यामत तक पैदा होने वाली रूहों को पुश्तों से निकाल के खड़ा किया और पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने जवाब दिया, हाँ हम आपको रब मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि ये अहद क्यों ले रहा हूँ, ताकि क़यामत के दिन तुम ये न कहना कि शिर्क तो हमारे बाप दादा करते रहे और हम तो इससे बेखबर थे। यहाँ उसी अहद की बात कर दी, लेकिन अफसोस की बात क्या है कि इंसान दुनिया में आके भूल जाता है, दूसरों को खुदा मानने लगता है, दूसरों को पूछने लगता है, उनसे नफे और नुकसान अपने जोड़ने लगता है। और यहाँ चूंकि लफ्ज़ है इबादत का, तो फिर इबादत के वो मानी भी याद रखने चाहिए जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से भड़के हैं। बंदगी, गुलामी, इताअत। बंदगी तो सारी जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। जब तक ये मफहूम समझ में नहीं आता, तब तक इंसान नमाज पढ़ के भी मज़ा नहीं लेता। रूखी फीकी नमाज, वो नमाज सिर्फ एक एक्शन तो होता है लेकिन अमल नहीं बनता। जब तक इंसान को इबादत का सही माना नहीं समझ आता, फिर वो हर दर पे झुकता है, हर एक से डरता है, हर एक से उम्मीदें लगाता है, लेकिन जिसको बंदगी का सलीका आ जाता है फिर उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। फिर वो अपने नज़रियात को भी कुर्बान कर देता है अल्लाह की बात के आगे, फिर वो अपनी ज़ात बिरादरी के बुत तोड़ देता है रब की बात के आगे, फिर वो मुआशरे के रस्म व रिवाज पे अल्लाह के दीन को कुर्बान नहीं करता बल्कि उनको कुर्बान करता है। और एक वक्त आता है कि फिर उसकी ज़िंदगी चलता फिरता कुरान हो जाती है, समेना व अताना की। तो लिहाजा ला ताबुदु इल्ला इया असल में एक दावत है खुदा रुखी ज़िंदगी की, सबसे कट के उसके बन जाओ। जब तुम रब के हो जाओगे तो रब सबको तुम्हारा कर देगा, और जिसको ये बात समझ आ जाती है उसकी ज़िंदगी इस दुनिया में भी जन्नत का नमूना बन जाती है। और जो इस बात को भुला के जीते हैं फिर हर दर पे झुकते हैं, हर एक से उम्मीदें लगती हैं और टूटती हैं। वो एक सजदा जिसे तुम गिरा समझता है, दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात। तो लिहाजा पहला दर्स क्या है? तौहीद का। और उसके बाद बंदों की बात शुरू हुई, हुकूकुल इबाद की बात शुरू हुई, तो फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, वालदैन के साथ एहसान करो। ये नहीं कहा कि उनका हक दो, बल्कि एहसान। और एहसान का लफ्ज़ हुसन से, किसी को उसके हक से ज़्यादा देना, उनके साथ हुस्ने सलूक करो। कितने प्यारे अंदाज में माँ बाप की इज्जत और एहतराम के लिए इंसान के जहन को तैयार किया जा रहा है, दिल के अंदर वो मोहब्बत पैदा की जा रही है, वो खूबसूरत सिलसिला जो बचपन की यादों का, जो माँ बाप के साथ अपने मामलात का, कि जिसको इंसान अक्सर बड़ा होने पे भूलने लगता है। तभी तो अगली आयतों में कह दिया, वख्फिज लहू मा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो, और जुबान पे क्या तराने हो, रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, उन पे वैसे ही रहम कर दे जैसे कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला था। हकीकत यह कि बचपन इंसान के लिए बड़ा खुशगवार होता है। बचपन की बातें इंसान को याद आए तो बहुत अच्छा लगता है, ये इंसान की फितरत है। बचपन की यादों में मोहब्बतें गुंदी होती हैं। इस तरह से लगता है कि जैसे इंसान बड़ा ही अहम था, अल्लाह ताला आज उसी बचपन का जिक्र करके इंसान को समझा रहे हैं कि देखो, ये मोहब्बतें बांटने वाले माँ बाप आज तुम्हारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। कल जब तुम बेआसरा थे, तुम अपनी खुराक नहीं ले सकते थे, कल तुम अपनी गंदगी साफ नहीं कर सकते थे, कल तुम बेयारो मददगार थे, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत की, तुम्हें 9 माह अपने पेट में रखा, जब तुम पैदा हुए तुम्हें 2 साल दूध पिलाया, तुम्हें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, तुम खा नहीं सकते थे और वो माँ तुम्हारे पास बैठती थी, तुम्हें खिलाती थी, तुम बोल नहीं सकते थे, वो तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें सिखाती थी, तुम तोतली तोतली आवाज में कैसे बोला करते थे, उसने तुम्हें बोलना सिखाया, उसने किस तरह तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई, किस तरह उसने तुम्हें अपने खानदान के एक एक फर्द से मुतारिफ कराया, किस तरह उसने तुम्हें हकूक और फराइज सिखाए, कैसे तुम्हें उठ उठ के स्कूल भेजा करती थी, कितने दुख काटे उस माँ ने तुम्हारे लिए, और आज तुम जवान हो, आज तुम्हारी सलाहियतें नशोनुमा पा चुकी, आज वो माँ तुम्हारी तवज्जो की मुस्तहिक है, आज उसको याद रखो, आज उसके सामने अकड़ो नहीं, छुप के बात करो, आजजी के साथ मामला करो अपनी उस माँ के साथ, वो तुम्हारी माँ हो सकता है कि आज दुनिया में ना हो, तो फिर जो उसके साथ किया है उस पे अपने ऊपर शर्मिंदा होते हुए रब से माफिया मांगो, और अगर वो दुनिया में है तो फिर देर नहीं हुई, जाओ और मोहब्बत से अपने बाजू फैला दो और उस माँ को अपनी आगोश में ले लो। किस तरह वो जमात तुम्हारे साथ मोहब्बत करती थी, और बाप को भी नहीं भूलना, वो मोहब्बत करने वाला बाप जिसने अपनी जवानी घुला दी तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, सारा दिन काम कर करके अपनी रातों की नींद कुर्बान करके तुम्हारे लिए चीज़ें जमा की, तुम्हें अच्छा खाना मिले, तुम्हें अच्छी तालीम मिले, आज वो बाप तुम्हारी तवज्जो का मुस्तहिक है। अल्लाह ताला इंसान के दिल के तारों को हिलाते हुए उसको बचपन की बातें याद दिलाते हैं। क्या ज़रूरत थी यहाँ ये बात कहने की कि कमा रब्बयानी सगीरा, बात तो सीधी सीधी भी कही जा सकती थी कि माँ बाप के लिए दुआ करो। बचपन क्यों बीच में आया? क्योंकि अक्सर इंसान बचपन की बातें भूलने लगते हैं और वो सब कुछ भूल के अपने आप को एक खुद मुख्तार इंसान महसूस करने लगते हैं। अल्लाह ताला उनकी वो नेकियां याद दिलाता है, कैसे उसने तुम्हारे साथ ये मामला कराया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कितना प्यारा अंदाज है, तुम्हारे पास इनमें से एक या दोनों, ऑप्शन दे दी, किसी के पास दोनों होते हैं, किसी के पास एक होता है, किसी के पास एक भी नहीं रहता, लेकिन अगर कोई मिल गया तो गम ना करो, अगर उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जवानियां घुलाई तो आज उनके बुढ़ापे की कदर कर लो, आज उनके उस बुढ़ापे को इस तरह संभाल लो जैसे उन्होंने तुम्हारे बचपन को संभाला, कैसे कि कि उनके सामने उफ न कहो। फला तकुल्लहुमा उफ़िन, नरम से नरम कलमा, जो एहतजाज के तौर पे इंसान बोले वो उफ़ का कलमा। कहा उफ़ भी ना कहो, कहाँ फिर इससे बड़ी बात करनी, कहाँ उनको कहना शट अप, कहाँ उनको कहना कि आप स्टूपिड हैं, आपको समझ नहीं। बड़े बड़े लफ्ज़ मत बोलो, उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया था। बड़ी बड़ी बातें मत कहो, क्योंकि तुम उन्हीं के सामने पल के बड़े हुए हो, उनको तुम्हारे हर राज की खबर है, वो तुम्हारी सारी कमजोरियों को जानते हैं। किनके सामने बड़े बनते हो, किनकी निगाहों में बड़ा बनने की कोशिश करते हो। देखो, अगर तुम्हारे किसी लफ्ज़ से उनका दिल दुख गया तो उनके दिल टूट जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत भरा दिल जल्दी टूटता है। जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात बड़ी चुभती है, लिहाजा सोच के बोलना। फला तकुल लहुमा उफ़िन, लफ्ज़ उफ़ कह के बात नहीं ख़त्म। वला तनहर हुमा, उन दोनों को छिड़कना भी नहीं, डांटना नहीं उनको। एक एहसान नाशनास की तस्वीर सामने आती है, एक बेकदरे इंसान की तस्वीर, जिसको ये एहसास ही नहीं कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ क्या सलूक किया था, कितने एहसानात हैं उनके मुझ पे। आज भी आप देखिए कि इस दुनिया में कितने इंसान हैं कि जो माँ बाप के सामने जुबान दराजी करते हैं, एहसान जतलाते हैं। कितना दिल कटता होगा उन माओं का, कितना दुख होता होगा उन बापों को ये बातें सुन के, कि जिन्होंने इंसान को कहाँ तक परवान चढ़ाया, माँ ने मौत की कश्मकश से गुजर के दुनिया में लाने का सबब बनी। यानी वो माँ ही थी ना कि जिसने जान पे खेल के तुमको पैदा करने का सोचा। आज तुम उस माँ को डांटते हो, छिड़कते हो। उसने तुम्हें 2 साल दूध पिलाया, और वो दूध कहाँ से बनता था, माँ की हड्डियों से निकलता था। उसने अपना आराम कुर्बान किया, तुम्हें दूध पिलाते हुए कितनी मुख्तात हो जाती थी। सोती माँ उठ जाती थी तुम्हारी आवाज़ सुन के, सर्दियों में तुम्हारा बिस्तर गर्म करने के लिए कितना फिक्रमंद रहती थी। आज उस माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उठाती थी तो नरम हाथों से उठाती थी कि कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। सारे दिन की थकी हारी रात को अपनी थकन भूल के सिर्फ माँ अपने बच्चे को संभालती है। और ऐसी ही माँओं को फिर बड़े होके बच्चे कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया, आपने तो हमसे मोहब्बत नहीं की। और मैंने तो वो गुस्ताखाना जुमले सुने कि जुबान पे आते हुए ऐसा लगता है कि जुबान जलने लगती है, कि जब बच्चे ये कहने लगे ना करते पैदा, आपने तो अपने लिए किया, आपने तो खुद इंजॉय किया, हमने तो नहीं कहा था हमें पैदा करें। ये किसने जुबान खुलवाई, ये कल्चर किसने सिखाया, ये नाशनासी किसने सिखाई। रब का कलाम तो क्या कहता है कि बात निकले मुंह से तवक्कुल्लहुमा कौलन करीमा, नरम बात करो, करम वाली बात करो, उनके सामने जुबान न खोलो। कहाँ बुरी बात कहना, उनके सामने इस तरह की गलत बातों को रखना कि उनका दिल कट जाए। अगर देखा जाए तो आज ये सारी ही बातें लोगों को भूल गईं, सारे ही सबक याद दिलाने की जरूरत है। किस तरह आज औलादें ना शुक्री बन के, ना फरमान बन के माँ बाप की आंखों के आंसू बन गई। किस तरीके से वो चीज़ें जिसको बुढ़ापे का सहारा समझ के इंसान पालता है, वो बुढ़ापे का दुख देने वाले बन गए। किसी की औलाद नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह का सहारा बहुत होगा, लेकिन जो औलाद को परवरिश करें ये सोच के कि बुढ़ापे में काम आएंगे, आज वही बच्चे रुलाने का सबक क्यों बन गए? इसलिए कि ये सबक उनको याद नहीं, उनको बताई नहीं आए थे। कैसे माँ के सामने बैठना है, वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उनके सामने अपनी जिल्लत का बाजू रहमत से झुका दो। माँ बाप के सामने बैठने का तरीका सिखाया जा रहा है, इनके सारी के साथ लोअर योर विंग्स, बड़े क्यों बनते हो, बिच बिच जाओ, ये वो हस्ती है जिसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, जरा सा खतरा होता है मुर्गी के पर के नीचे आने लगते हैं। कुटेड़ी निगाह से बच्चों को देखने लगे तो मुर्गी उसको देख के आंखें दिखाती है, कुट कुट की आवाजें आती हैं उसके मुंह से, कुमैली निगाह से देखे तो सही। और वो बच्चे हल्की सी आवाज सुन के माँ के परों के नीचे छुपते हैं। इसी तरह बचपन में माँ अपने बच्चे का तहफ्फुज़ करती है, और फिर वो बच्चे जब उड़ने लगते हैं तो फिर उनको माँ का ख्याल कम ही रहता है, बिल्कुल भूल जाते हैं कि आज उनको भी हमारी जरूरत है। रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मुझे तो लगता है कि ये आयतें नहीं है बल्कि एक मंजर दिखाया जा रहा है कि देखो कैसे बैठना है, कैसे चलना है, आजी के साथ। जैसे कोई परिंदा अपने पर बिछा देता है उड़ने के लिए, इसी तरह जब तुम माँ बाप के सामने अपने आप को बिछाओगे तो तुम्हें भी उड़ान मिलेगी, तुम भी उड़ोगे। जो बुलंदियों पे उड़ना चाहता है, जो बुलंदियों पे पहुंचना चाहता है, उसको फिर माँ बाप के आगे झुकना पड़ेगा। इन्हीं परों को झुका के इज्जत मिलती है। कभी आपने परिंदे को उड़ता देखा, पूरा पहले बिछता है नीचे फिर ऊपर उठता है। इसी तरह दुनिया में इज्जत नहीं मिलती जब तक इंसान अपने माँ बाप के साथ आजिज ना हो, झुकाव ना पैदा करे, बिछ ना जाए, तुम्हारी आवाजें इनके सामने पस्त हो जाएं, तुम्हारी जरूरियात नीचे हो जाएं, इनके तकाजे ऊपर आ जाएं। इनके आगे बढ़ के बोलना ना, इनसे ऊंचा ना बोलना, इनसे आगे बढ़ के चलना ना, इनकी बात के आगे अपनी बात को ना रखना अगर तुम्हें रब की रहमत चाहिए। यहाँ रहमत का लफ्ज क्यों बोला? मोहब्बत भी तो लफ्ज आ सकता था, इसलिए कि रहमत बेलौस होती है, किसी गरज के बगैर होती है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो इंसान ये समझने लगता है कि अब मुझे इनसे कुछ नहीं मिलना। जब मिलना कुछ नहीं तो फिर अब इनकी बात क्यों मानो? बल्कि माँ बाप की बजाय अब अपनी औलाद से उम्मीदें लग चुकी होती हैं, क्योंकि अब उनके मुस्तकबिल बनाने हैं। फिर इंसान अपने बच्चों की जरूरियात में इतना गर्क होता है कि माँ बाप की तरफ देखता ही नहीं, अपने बच्चों के पीछे भागता है और माँ बाप उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला याद दिलाता है कि देखो तुमने उनसे रहम का मामला करना है। ठीक है वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन तुमने इनको अभी भी सब कुछ देना है, इनके पीछे चलना है। अल्लाह ताला ने इनको जो तुम्हारे लिए दुनिया में मौजूद रखा, तुमने इनके साथ मामला करके अपनी दुनिया में जन्नत बनानी है। यानी ऐसा लगता है ना कि जैसे अल्लाह ताला इंसानों के अंदर के हालात को भी जानते हैं, क्योंकि अमूमन इंसान इन रिश्तों की ना कदरी करता है, ना शुक्री करता है, फॉर ग्रांटेड लेता है, कीमत नहीं देनी पड़ती ना इनके लिए, कुछ स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, बिन मांगे मिल जाते हैं। दुनिया में कोई एक चीज़ लेने के लिए कितनी मेहनत होती है, बाज़ दफ़ा शादी करने के लिए उस औरत के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन माँ बाप बगैर किसी मेहनत के मिल जाते हैं तो इंसान ये सोचता है कि बस अब यही बस ऐसे ही है। फरमाया नहीं, इनकी कदर करो, अल्लाह से रहम मांगो इनके लिए। अल्लाह के बाद अगर किसी का हक है तो इनका हक है। अगर तुम्हें अल्लाह की रहमत चाहिए तो तुम्हें इनसे नरमी के साथ मामला करना पड़ेगा। इनके जिस्म को छुओ तो नरमी से छुओ, इनको देखो तो मोहब्बत भरी निगाहों से देखो, इनको तवज्जो दो तो पूरे दिल के साथ दो, और जुबान पे अगर कलमा आए तो यही आए कि रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम्हारी दुआओं से हो सकता है इनका बुढ़ापा आसान हो जाए, इनकी तलखी आसानियों में बदल जाए। दुनिया में तो जो है ही है, अगर कब्रों में जा चुके तो इनकी कब्रों को वुसअत मिल जाए, कुशादगी मिल जाए, तुम्हें क्या पता। कभी बखील ना बनो इनकी दुआओं के लिए। एक शख्स नबी सल्लम के पास आया जिसने तवाफ अपनी माँ को अपने कंधों पे सवार करके किया, और कहने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लम, मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। तो आपने फरमाया कि तूने एक सांस का भी हक अदा नहीं किया। कहाँ उसकी पूरी जिंदगी की कोशिशों और मेहनतों का हक देना। अब देखिए कि जब इंसान बूढ़ा होता है ना, तो वो बिल्कुल बच्चा बन जाता है। वो बिल्कुल वैसी ही बातें करने लगता है जैसी की बातें इंसान बचपन में करता था। लेकिन बच्चों की बातें लोग खुशी खुशी सुनते हैं और आगे बताते हैं, लेकिन बूढ़ों की बातें शायद इसलिए अच्छी नहीं लगती कि उनके चेहरे में बचपना नहीं होता। यानी उनकी आदतें, उनकी हरकतें तो बच्चों वाली बन जाती हैं, लेकिन उनका चेहरा बच्चों वाला नहीं होता। लोग बच्चे की बात 10 जगह सुनाते हैं, उसने ये कहा, उसने ये किया, लेकिन बूढ़े की बात एक से दूसरी बार नहीं कर सकते, नहीं सुना सकते। क्योंकि इस तरह से इंसान ये महसूस करता है कि वाकई मैंने अपने आप को खुद ही बड़ा कर लिया। अगर इंसान अपने बचपन की छोटी छोटी बातों को याद रखे, और अगर माएँ उनकी वो बातें लिख लिया करें ना, तुमने पहला ये लफ्ज़ बोला था, तुमने पहली ये बात की थी, इस दिन ये किया था, तो हो सकता है कि बड़े हो के वो किताब उनको दे दी जाए तो उनको कुछ ना कुछ तो अपना बचपन याद रहे। अब देखिए कि वक्त जब पलटता है तो बिल्कुल इंसान उसी कैफियत में आ जाता है जिसमें पहले था। खाना खाते हुए गिराने लगता है, बात करता है तो बात काम काम जाती है, टूटे हुए लफ्ज होते हैं। बड़े लोग चिल्लाने लगते हैं, बाबा जल्दी बात करो, इतनी दफा बात करते हो। जैसे बच्चे एक बात को कई बार करते हैं, इस तरह बूढ़े भी एक बात को कई बार करने लगते हैं। जिस तरह बच्चों को नहाना अच्छा नहीं लगता, बूढ़ों को भी बाज दफा कपड़े बदलना अच्छा नहीं लगता। उनको तकलीफ होती है, वो बुरा मानते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा मामला क्यों करते हो, मुझे तो नहीं ऐसा करना। यानी इतनी मुमासलत है बचपन में और बुढ़ापे में, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ ये सबक दे दिया कि देखो तुम उनके साथ अपना मामला कैसा रखो, तुम्हें उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना है। वालदैन की क्या ख्वाहिश होती है अपने बच्चों के नाम। जिस दिन तुम हमें बूढ़ा कमजोर देखो और बेजार देखो, तो तुम सब्र करना, हमें समझने की कोशिश करना। बचपन में माँ बाप भी तो सब्र करते हैं। जब हम खाना खाते हुए गंदगी करें और अपने कपड़े भी ना बदल सकें, तो तुम हमें बर्दाश्त करना। और वो वक्त याद करना जब हमने तुम्हें खाने पिलाने और कपड़े बदलवाने में कितना वक्त लगाया। जब हम तुमसे बात करें और एक बात को बार बार दोहराएं, तो हमें काटना नहीं सुनना। जब तुम छोटे थे तो हमें एक ही कहानी कई बार सुनाते थे, जब तक कि तुम्हें नींद न आ जाती थी। जब हम नहाना न चाहें तो हमें शर्मिंदा न करना, न डांटना। याद करना जब हम तुम्हारे हजारों बहानों के बावजूद तुम्हारे पीछे पड़े रहते थे कि किसी तरह तुम नहा लो। जब हम इंटरनेट की नई टेक्नोलॉजी को ना समझ सकें, तो हमें हमारे तरीके सिखाने में मदद देना। हमने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, हमने तुम्हें तरीके से खाना, तरीके से कपड़े पहनना और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। जब कभी-कभी हमारी याददाश्त खो जाए या बातचीत का मज़मून भूल जाए, तो हमें याद करने के लिए मुनासिब वक्त देना। और हम ना कर सकें तो घबराना नहीं, असल चीज़ बातचीत नहीं, बल्कि हम तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि तुम हमारी बातें सुनो। अगर कभी हमारा खाने को दिल न चाहे, तो हमसे ज़बरदस्ती न करना। हम ज्यादा खाना नहीं चाहते। जब हमारे थके हुए पांव हमारा साथ छोड़ दें और हम लाठी के बगैर चल न सकें, तो हमें अपने हाथों से थाम लेना। जिस तरह तुम जब अपने पहले कमजोर कदम उठाने की कोशिश करते थे, तो हम तुम्हें थाम लेते थे। और जब किसी दिन हम ये कहें कि हम और जिंदा रहना नहीं चाहते, हम मरना चाहते हैं, तो गुस्सा ना होना। एक दिन तुम भी ये बात समझ जाओगे। हमारी हिम्मत बढ़ाना, हमारी उम्र जिंदा रहने की नहीं है, हम तो बाकी जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब तुम्हें किसी दिन पता चले कि हमारी गलतियों के बावजूद हम हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहते थे और हम कोशिश करते थे कि तुम्हारे लिए सही रास्ता इख्तियार करें, तुम भी हमें अपने साथ रखकर उदास, नाराज और शर्मिंदा न होना, समझने की कोशिश करना और हमारी मदद करना जिस तरह हमने की जब तुम जवान थे। चलने में हमारी मदद करना जब तक हमारी जिंदगी है, मोहब्बत और इज्जत के साथ हमें जिंदा रहने में मदद करना। हम मुस्कुराहट से और बेहद प्यार से, जो हमारे दिलों में हमेशा तुम्हारे लिए होता है, जवाब देंगे। वकदा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि एहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा वाग्फिर लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला एक और जगह फरमाते हैं, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैही हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुरली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। असल बात क्या है कि माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं। न जाने हमने कभी इस मोहब्बत को महसूस किया कि नहीं। मैं चाहूँगी कि हम सब खामोशी से चंद मिनट तक अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, जितनी मोहब्बत उनके लिए महसूस कर सकें, जितनी आजजी दिल में ला सकें, जितनी नरमी दिल में आ सके उनके लिए, उसके साथ दुआ मांगें।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है। मेरी अम्मी की भी डेथ को 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं और बहुत उनकी सडन डेथ थी और बहुत दुख होता है उनका, और हर लम्हे वाकई डेथ के बाद पता चलता है कि माँ क्या चीज़ होती है। और मुझे हर इस चीज़ का एहसास है कि मुझे अपनी अम्मी के साथ रहने का वक्त बहुत कम मिला, क्योंकि स्टडी के लिए हम लोग सऊदियों में रहते थे एंड देन पाकिस्तान में गई थी। तो बस मैं तो किसी को रेफर नहीं करूंगी, कोई भी अपनी माँ से दूर हो।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासमीन है। हम छोटे थे तब भी हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया था, हमारी अम्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी साबिर खातून थी, अल्लाह ने जन्नत फिरदौस अता फरमाई। आज अल्लाह सुब्हान तआला की इनायत का बाद आज मैं जो भी कुछ उनकी थाली में उतर गए थे, इतनी खुशी होती है कि आखिरी जिंदगी उन्होंने मेरे घर में मेरे साथ यहाँ ह्यूस्टन में गुजारे थे। 2.5-3 साल मेरे साथ रही थी, इतना सब्र, इतना सब्र, कभी उन्होंने कभी कोई शिकायत ना की। और उनकी डेथ भी ऐसे हुई कि समर की छुट्टियों में सारे मेरे भाई बहन मेरे घर पे थे, उन्होंने सबसे बातें की, सदका खैरात अपने हाथ से, सारे अच्छे अच्छे काम, सब भाई बहन सारे बच्चे नवों से पोते पोते सब इनके इर्द गिर्द थे। आज इनकी कब्र भी इसी शहर में है। मेरे सास ससुर भी नहीं, मेरे मम्मी अब्बा भी नहीं, लेकिन इनकी यादें, अल्लाह इन सब की मगफरत करे, जन्नत फिरदौस में सलामत फरमाए, हमें उनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।
इतने खूबसूरत रिश्ते होते हैं कि इंसान वाकई इनको उनकी कदर कर नहीं पाता। अगर इंसान ये देख ले ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी ने किसी के लिए किसने किया है, तो मेरा ख्याल है कि वो माँ बाप का रिश्ता। लेकिन अफसोस ये है कि हम इस रिश्ते को निभा नहीं पाते। कितनी ही औलादें हैं जो इन बातों को जाने बगैर अपने माँ बाप के साथ कैसे मामलात करती हैं, और उसके बाद फिर जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर इस चीज़ का एहसास होता है। मेरा ख्याल है कि अगर हम सब एक जुमला भी इस नीयत से लिख देते हैं ना, या बोल देते हैं कि इस इजहार के तौर पे कि वाकई हमसे कमी रही, हमसे गलती हुई, तो हमारा दिल नरम होगा, दिल पिघलेगा इससे। एक माँ की कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बेसिकली एक इंग्लिश कहानी थी और उसी से फिर उर्दू तर्जमा करवाया। सुनिए और देखिए कि माएँ अपनी बच्चों के लिए क्या कुछ करती हैं। इसका उन्वान क्या है? अपनी उड़ान नीची करो, लोअर योर विंग्स, वाहफिज लहुआ जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा। मेरी माँ जिसकी सिर्फ एक आँख थी, मुझे इससे सख्त नफरत थी। वो मेरे लिए नहायत शर्मिंदगी और परेशानी का बायस थी। मेरी माँ की फ्ली मार्केट में एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ वो छोटी मोटी घास फूस और सब्जियाँ बेचती, जिससे हमारा गुजारा होता। लेकिन वो मेरे लिए सख्त शर्मिंदगी का बायस ही रहती। एक दफ़ा वो मेरे स्कूल में आ गई। उस दिन मेरे स्कूल में फील्ड डे था और सारे बच्चे बाहर खेल कूद रहे थे। अपनी माँ को देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने इसकी तरफ नफरत से देखा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन स्कूल में बच्चों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि तुम्हारी माँ की सिर्फ एक आंख है। मैंने दिल में सोचा कि काश मेरी माँ इस दुनिया ही से गायब हो जाए। लिहाजा मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है? अगर तुमने मेरा इसी तरह मजाक उड़वाना है तो क्यों ना तुम मर जाओ? मेरी माँ ने कोई जवाब ना दिया। मेरा ख्याल था कि मैंने ये बात कहकर अच्छा नहीं किया, लेकिन साथ ही ये सोचकर खुशी भी हुई कि मैंने वो सब कह दिया जो मैं बहुत अरसे से कहना चाहता था। शायद इसीलिए मेरी माँ ने ना इस पर डांटा ना सजा दी, लेकिन मैंने ये कभी ना सोचा कि मैंने अपनी माँ के एहसास को शदीद ठेस पहुँचाई। उस रात मेरी आँख खुली और मैं पानी पीने के लिए किचन में दाखिल हुआ। मैंने देखा मेरी माँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ ले रही हैं कि कहीं इसके रोने की आवाज़ से मेरी आँख न खुल जाए। मैंने इसकी जानिब देखा और वापस हो गया, क्योंकि जिस तरह से मैंने इससे बात की थी वही चीज़ थी जो मेरे दिल के किसी कोने में चुटकियां ले रही थी। हालांकि मुझे सख्त नफरत महसूस हो रही थी अपनी माँ से, जो सिर्फ एक आंख से रो रही थी। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं बड़ा होकर एक कामयाब इंसान बनूंगा, क्योंकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ से और खस्ता हाली से सख्त नफरत थी। फिर मैंने खूब दिल लगाकर तालीम हासिल की और मैं अपनी माँ को छोड़कर सिविल आ गया और मज़ीद तालीम हासिल करने लगा। फिर यहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटी में मुझे मेरी तमाम सलाहियतों की बिना पर कबूल कर लिया गया। फिर मैंने शादी कर ली, एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया, फिर बच्चे भी हो गए। अब मैं एक कामयाब इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। ये मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी कि जब तक ये क्या, ये कौन है? ये मेरी माँ थी, यानी इसके दरवाजे पे वो माँ आ जाती है कुछ सालों के बाद। अपनी उसी एक आंख के साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान फटकर मुझ पर गिर गया हो। मेरी छोटी बेटी दौड़कर मेरी माँ की एक आंख से डरकर मुझसे लिपट गई। मैंने इससे पूछा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानता, मैंने इस तरह से कहा जैसे वाकई मैं इसको नहीं जानता था। मैं बुरी तरह से इस पर चीखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरी बेटी को डराने की? दफे हो जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। मेरी माँ ने घबरा कर जवाब दिया, माफ़ करना, मैं शायद गलत पते पर आ गई हूँ, यानी गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। फिर वो फौरन आंखों से ओझल हो गई। शुक्र है उसने मुझे पहचाना नहीं। मैं बहुत पुरसकून हुआ और मैंने खुद से कहा कि ना मैं इस बात की परवाह करूंगा ना इसके बारे में सोचूंगा, और फिर मैं पुरसकून हो गया। एक दिन मुझे अपने स्कूल की जानिब से एक खत मिला जिसने मुझे अपने स्कूल की रीयूनियन के लिए इनवाइट किया। लिहाजा मैंने अपनी बीवी से झूठ बोलकर कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ इस बहाने से चला आया। रीयूनियन के बाद मैं अपने पुराने झोंपड़े में, जिसे मैं घर कहता था, सिर्फ एक तजस्सुस की खातिर वहां पहुंचा कि चलो देखो कि इसका क्या हाल है। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी माँ नीचे ठंडे फर्श पर गिरी पड़ी थी, लेकिन मैंने इसको इस हालत में पाकर एक आंसू भी न टपकाया। इसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था जो मेरे नाम उसका एक खत था। मेरे बेटे, शायद मेरा आखिरी वक्त करीब है और अब मैं सिविल भी नहीं जा सकती, लेकिन क्या मेरी ये ख्वाहिश तुम्हारे लिए बहुत जहमत का बायस होगी कि अगर तुम कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया करो? मैं तुमको बहुत याद करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना कि तुम अपने स्कूल की रीयूनियन के लिए आने वाले हो, लेकिन मैंने सोचा मैं तुमसे मिलने स्कूल नहीं आऊंगी तुम्हारी खातिर, क्योंकि इसको बुरा लगता था ना माँ को देख के। और मुझे माफ कर देना कि मेरी सिर्फ एक आंख है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तुम्हारे साथ एक हादसा पेश आ गया जिसमें तुम अपनी एक आंख खो बैठे थे। एक माँ की हैसियत से मैं तुमको सिर्फ एक आंख के साथ नहीं देख सकती थी, लिहाजा मैंने अपनी आंख का करनिया तुमको दे दिया था। और मैं बहुत खुश थी कि अब तुम मेरी जगह एक नई दुनिया को देख सकोगे इस आंख से। मैंने कभी भी तुम्हारी किसी बात का बुरा ना माना। जितनी बार तुम मुझसे नाराज हुए मैंने हमेशा ये सोचा कि क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी मौत पर रो। बेटे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह। माँ किसी भी मजहब की हो बच्चों के लिए करती है, लेकिन बच्चे कदर नहीं करते। देखिए कि दिल पिघलाने के लिए अल्लाह का कलाम बड़ी खूबसूरत चीज़ है, हमारे दिल हों या हमारी औलादों के। एक बार फिर कलाम की तिलावत सुनते हैं, इस पूरे सबक को सुनिए और देखिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं।
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.